ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 29 सितंबर 2019 के लिए है। विषय वास्तविकता, स्वर्णपथ, यशाया। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। उत्तरदायी ध्यान, नीति वचन, यशाया। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरण आगतों की ढाल ठहरा है। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गुत्थी और मेरी गुत्थी एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गुत्थी में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। भजन सैनता। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी रहती है। वो आज तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे रहे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं अपने सब शिक्षों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँ। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वो मेरे मुँह के लिए मधु से भी मीठे हैं। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से, वरुण कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ, और सब मिथ्याया मार्ग से बैर रखता हूँ। तेरी चेतावनियाँ अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पड़े हुए हूँ। तेरी बातों के खुलाने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। लूका। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। लूका। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गेनसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। लूका। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल आया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि ये दृष्टांत क्या है। उसने कहा, दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा कर ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वो हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वो थोड़ी देर तो विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वो हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वो हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। इब्रानियों। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्राबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार चीरता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तमैथियस। पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपासूर्थी, लोभी, डींगामार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, रतागन, अपवित्र, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख अभिलाष ही के चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धाम की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तात्पर हो जाए। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान वास्तविकता के सभी रूपों को बनाता है, उसके विचार आध्यात्मिक यथार्थ हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में ये घोषित किया गया है कि सभी चीज़ें परमेश्वर के वचन के माध्यम से बनाई गई हैं, उसमें से कोई भी वास्तु उसके लोगोस या शब्द के बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ भगवान ने अच्छा या योग्य बनाया है। जो कुछ भी विधाता या दवेश अपूर्ण है, उसने नहीं बनाया, इसलिए ये असत्य है। उत्पन्न के विज्ञान में हमने पढ़ा कि उसने वो सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, और देखा तो बहुत अच्छा था। वास्तविकता और उसके विज्ञान में होने के क्रम को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम है। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियाँ। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। दिव्य तत्वा में मानसा, जैसा कि आध्यात्मिक समझ से पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभी कुछ मन है और वो मन ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्गीय, अर्थात सभी शक्ति, सभी उपास्थिति, सभी विज्ञान। इसलिए सभी वास्तव में मन की अभिव्यक्ति है। सत्य के अनुयायियों के रूप में हम बाइबल के प्रतीत वचन को अनंत जीवन के लिए हमारे पर्याप्त मार्गदर्शक के रूप में लेते हैं। बाइबल में सभी उपचारों का नुस्खा है और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग उपचार पाते थे। पाप और बीमारी दोनों एक ही सिद्धांत द्वारा ठीक किए जाते हैं। वृक्ष मनुष्य के ईश्वरी सिद्धांत के लिए विशेषत है, जो हर उपस्थिति के बराबर है। पाप, बीमारी और मृत्यु से पूर्ण मुक्ति प्रदान करता है। यदि पाप, बीमारी और मृत्यु को कुछ भी नहीं समझा जाता तो वो गायब हो जाते हैं। जैसे सूरज से पहले वाष्प पिघलते हैं, वैसे ही अच्छाई की वास्तविकता से पहले बुराई गायब हो जाएगी। एक को दूसरे को छुपाना चाहिए, ये कितना महत्वपूर्ण है। फिर वास्तविकता के रूप में अच्छा चुनना। मनुष्य ईश्वर, आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अनंत स्वतंत्रता, सद्भाव और असीम आनंद है। और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। योर के द्वीप असामू की तरह मनुष्य स्वतंत्र है। पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए भगवान का क्षेत्र। इसके कारण और भी हैं, इसलिए किसी अन्य कारण से कोई प्रभाव नहीं हो सकता और औकात में कोई वास्तविकता नहीं हो सकती जो इस महान और एकमात्र से आगे नहीं बढ़ती है। पाप, बीमारी और मृत्यु विज्ञान के नहीं बल्कि होने के हैं। ये वो त्रुटियां हैं जो सत्य, जीवन या प्रेम की अनुपस्थिति को रोकती हैं। आध्यात्मिक वास्तविकता सभी चीज़ों में वैज्ञानिक तथ्य है। मनुष्य और पूरे ब्रह्मांड की कार्रवाई में दोहराया गया आध्यात्मिक तथ्य समान जैसा पूर्ण है और सत्य का आदर्श है। आत्मा, ईश्वर ने सभी को स्वयं में बनाया है। आत्मा ने कभी सामग्री नहीं बनाई। आत्मा में ऐसा कुछ नहीं है जिससे सामग्री बनाई जा सके, क्योंकि बाइबल घोषित करती है, बिना लोगोस के परमेश्वर का वचन या एओन, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। आत्मा एकमात्र पदार्थ है, अदृश्य और अविभाज्य अनंत भगवान। आध्यात्मिक और शाश्वत चीज़ें पर्याप्त हैं, चीज़ें सामग्री और अस्थाई असाध्य हैं। ये मान लेना एक गंभीर गलती है कि ये पदार्थ बुद्धिमान अस्तित्व की वास्तविकता का हिस्सा है, या ये कि आत्मा और पदार्थ बुद्धिमता और गैर बुद्धिमता एक साथ रह सकते हैं। ये त्रुटि विज्ञान नष्ट कर देगा। कामुक को आध्यात्मिक का मुखा पत्थर नहीं बनाया जा सकता, ना ही परिमित का मार्ग बन सकता है। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमाकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्राकट करती है। और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। ये समझ भावधिक नहीं है, विद्वानों की प्रतीति का परिणाम नहीं है, ये प्रकाश में लाई गई सभी चीज़ों की वास्तविकता है। बाइबल की मूल भाषा में पढ़ाया जाने वाला दिव्य विज्ञान प्रेरणा के माध्यम से आया है और जिसे समझने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल के आध्यात्मिक अर्थ की गलतफहमी और कुछ धारणाओं में अप्रकाशित लेखों द्वारा शब्द की गलत व्याख्या, जिन्होंने केवल एक परिणत शिक्षक द्वारा कही गई बातें लिखी थीं। एक गलत शब्द समझ को बदल देता है और शास्त्र को गलत ठहराता है। उदाहरण के लिए, प्रेम को केवल ईश्वर की विशेषता के रूप में नाम देना, लेकिन हम विशेष और उच्चत पूंजीकरण के माध्यम से प्यार के इजहार की बात कर सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि प्रिय शिष्य का उसके एक पत्र में क्या मतलब है जब उसने कहा ईश्वर प्रेम है। इसी तरह हम सत्य की बात और जीवन की बात कर सकते हैं, क्योंकि मसीह ने स्पष्ट रूप से घोषित किया, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। सत्य को समझने से पहले सच्चाई की आध्यात्मिक समझ हासिल कर लेनी चाहिए। इस भावना को केवल इसलिए आत्मसत किया जाता है क्योंकि हम ईमानदार, निस्वार्थ, प्यार और नम्र हैं। ईमानदार और अच्छे दिल की मिट्टी में बीज बोना चाहिए। इसके अलावा ये मानव प्रकृति में मूल तत्व को उखाड़ फेंकने के लिए अधिक प्रभावी नहीं है। यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। शास्त्रों की आध्यात्मिक समझ वैज्ञानिक अर्थ को सामने लाती है और मरकस की सुसमाचार के अंतिम अध्याय में निर्दिष्ट नई भाषा है। यीशु के बोने वाले के दृष्टांत से पता चलता है कि हमारे गुरु ने उनके अधूरेपन को समझने के लिए नहीं लिया था, जो आध्यात्मिक शिक्षाओं को कमज़ोर और स्थूल दिलों को स्वीकार नहीं करते थे। जब एक सामग्री से आध्यात्मिक उद्धार पर जीवन और बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण को बदलता है, तो हम जीवन की वास्तविकता प्राप्त करेंगे। आत्मा का नियंत्रण और अपने ईश्वरीय सिद्धांत में मसीही धर्म या सत्य का अनुभव करेंगे। ईश्वरी विज्ञान ईश्वर का शब्द त्रुटि पर अंधेरे के लिए कहता है, ईश्वर सब में है और हमेशा मौजूद प्रेम का प्रकाश ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।